नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार जून की शुरुआत में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दूरसंचार विभाग अपेक्षित समय सीमा के अनुसार काम कर रहा है और स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण के संबंध में उद्योग की चिंताओं को हल करने की प्रक्रिया जारी है। स्पेक्ट्रम नीलामी के कार्यक्रम के बारे में पूछने पर वैष्णव ने कहा कि इसके जून की शुरुआत में होने की उम्मीद है। दूरसंचार नियामक ट्राई ने 5G सेवाओं को लागू करने के लिए एक बड़ी नीलामी योजना तैयार की है। वैष्णव ने कहा, हम नीलामी करने के लिए अपनी समय सीमा के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री ने कहा कि डिजिटल संचार आयोग ट्राई की सिफारिशों पर विचार करेगा और स्पष्टीकरण के लिए उनसे संपर्क करेगा। तमिलनाडु सरकार ने बृहस्पतिवार को केंद्र पर पलटवार करते हुए ईंधन पर लगाए गए उपकर और अधिभार को कम करने की मांग को दोहराया। तमिलनाडु सरकार ने कहा कि उपकर और अधिभार को मूल कर दरों के साथ मिलना चाहिए ताकि राज्यों को केंद्रीय करों से उनका हिस्सा सही मिल सके। राज्य के वित्त और मानव संसाधन प्रबंधन मंत्री पलानी वेल थियागा राजन ने कहा कि ईंधन की कीमतों पर केंद्र के अत्यधिक कर जारी है और राज्य के लिए कर को और कम करना न तो उचित है और न ही व्यवहार्य। इससे पहले बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र ने नवंबर 2021 को ईंधन की कीमतों का बोझ कम करने के लिए उत्पाद शुल्क कम किया था। कुछ राज्यों ने कर कम किया, लेकिन कुछ ने ये लाभ प्रदान नहीं किया। भारतीय अमेरिकी उद्यमियों के एक समूह ने एक वीडियो प्लेटफॉर्म पेश किया है जिसकी मदद से ऑनलाइन फिल्मों के प्रदर्शन से लेकर राजनीतिक रैलियों, टाउन हॉल और संगीत कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सकता है। ये वीडियो प्लेटफॉर्म आम वीडियो कॉन्फ्रेंस से बढ़कर है जिससे एक साथ 30,000 लोग जुड़ सकते हैं। वी मस्ट मीट नाम से शुरू किए गए इस प्लेटफॉर्म के संस्थापकों में निवेशक, रियल एस्टेट कारोबारी, डॉक्टर, शिक्षाविद और युवा फैशन डिजाइनर शामिल हैं। इसकी प्रौद्योगिकी पूरी तरह अमेरिका में विकसित की गई है। वी मस्ट मीट के संस्थापक एल मेसन ने बुधवार को कहा कि यह एक समुदाय आधारित तकनीक है। यह प्लेटफॉर्म व्यावसायिक बैठकों, राजनीतिक रैलियों, टाउन हॉल, संगीत कार्यक्रमों, ऑनलाइन फिल्मों के प्रदर्शन, शिक्षा और चिकित्सा अनुसंधान के तरीकों को बदल देगा। ओयो के संस्थापक और समूह CEO रितेश अग्रवाल ने कहा कि भारत के छोटे शहर अब युवा आबादी की आकांक्षाओं से प्रेरित उद्यमिता के केंद्र बन गए हैं। उन्होंने बृहस्पतिवार को कहा कि स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ाने का मौका देने से देश में कई यूनिकॉर्न तैयार होंगे। उन्होंने ग्लोबल यूनिकॉर्न समिट में तकनीक के उपयोग से भारत की विशाल ग्रामीण आबादी को जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम का आयोजन CII और DPIIT ने मिलकर किया। उन्होंने कहा कि इंटरनेट सुविधा का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर कम लागत में तेजी से वितरण की गुंजाइश और पूंजी तक पहुंच के साथ देश के छोटे व्यवसायों के पास बड़ी कंपनियां बनने के अवसर हैं। अग्रवाल ने कहा कि नया युवा भारत अपने कार्य क्षेत्रों में विश्व में अग्रणी बनाने की इच्छा रखता है। रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसने एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए नागपुर में 58 एकड़ जमीन खरीदी। कंपनी ने इस जमीनी सौदे की कीमत का खुलासा नहीं किया। गोदरेज प्रॉपर्टी ने शेयर बाजार को बताया कि इस जमीन को मुख्य रूप से प्लॉट की गई आवासीय इकाइयों के रूप में विकास किया जाएगा। ये परियोजना 15 लाख वर्ग फुट के अनुमानित बिक्री योग्य क्षेत्र की पेशकश करेगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार वर्ष 2022 की पहली तिमाही में भारत में सोने की मांग 18% घटकर 135.5 टन रह गई। WGC ने कहा कि मुख्य रूप से कीमतों में तेजी वृद्धि के कारण मांग घटी। वर्ष 2021 के पहले 3 महीनों में सोने की मांग 165.8 टन थी। सोने की मांग पर WGC द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि कीमत के लिहाज से जनवरी मार्च में सोने की मांग 12% घटकर 61,550 करोड़ रुपए रह गई। एक साल पहले इसी अवधि में ये आंकड़ा 69,720 करोड़ रुपए था। WGC के क्षेत्रीय CEO सोम सुंदरम PR ने PTI भाषा को बताया कि जनवरी में सोने की कीमतें बढ़ने लगीं और कीमती धातु इस साल की पहली तिमाही में 8% बढ़कर 45,434 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार समीक्षाधीन तिमाही के दौरान देश में आभूषणों की कुल मांग 26% गिरकर 94.2 टन रह गई, जो पिछले साल की इसी अवधि में 126.5 टन थी। इस दौरान मूल्य के लिहाज से आभूषणों की मांग में 20% की कमी हुई। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक सर्वेक्षण के मुताबिक 9 प्रमुख उद्योगों में दिसंबर 2021 तिमाही के दौरान 3.14 करोड़ श्रमिक कार्यरत थे, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि को दर्शाता है। इससे पहले सितंबर तिमाही में ये आंकड़ा 3.10 करोड़ था। मंत्रालय द्वारा बृहस्पतिवार को अक्टूबर दिसंबर 2021 के लिए तिमाही रोजगार सर्वेक्षण पर जारी रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक ट्वीट में कहा, हमें तिमाही रोजगार सर्वेक्षण के तीसरे दौर की रिपोर्ट जारी करते हुए खुशी हो रही है, जो 9 चुने हुए क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र के रोजगार की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता है। सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में नियोजित श्रमिकों की संख्या 3.14 करोड़ है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।